नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर, राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोयम्बतूर में एनआईडीआई गठबंधन की रैली का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। और लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जॉयंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। दोपहर समाचार के साथ मैं रवि कपूर। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण की अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 94 संसदीय सीटों के लिए चुनाव होंगे। गुजरात की सभी 26 सीटों, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, मध्य प्रदेश की 8, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4 सीटें, गोवा, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप की 2-2 सीटें और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान होगा। मध्य प्रदेश में बैतूल निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी अधिसूचना जारी हो गई है। इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए दूसरे चरण में मतदान होना था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार की मृत्यु के बाद इसे स्थगित कर दिया गया था। तीसरे चरण के लिए इस महीने की 19 तारीख तक नामांकन भरे जा सकेंगे। मतदान 7 मई को होगा। इस बीच पहले चरण के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता विभिन्न राज्यों में रैलियां कर रहे हैं। इस चरण में 19 अप्रैल और दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये दशकों बाद पहला चुनाव है जिसमें अलगाववाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी और सीमापार से गोलीबारी चुनावी मुद्दे नहीं हैं। श्री मोदी ने कहा कि पहले माता वैष्णो देवी की यात्रा या श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा भी चिंता का विषय होती थी, अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है और लोगों का भरोसा भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जल्द ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होंगे और इसे राज्य का दर्जा वापस मिलेगा।
वो समय दूर नहीं जब जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिलेगा। आप अपने विधायक, अपने मंत्रियों से अपने सपने साझा कर सकेंगे। हर वर्ग की समस्याओं का तेजी से समाधान होगा। यहां जो सड़कों और रेल का काम चल रहा है वो तेजी से पूरा होगा। देश विदेश से बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और ज्यादा संख्या में आएगी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर कभी भी चुनावी मुद्दा नहीं था और न ही कभी होगा। राम मंदिर के लिए प्रयास 500 साल पुराना है। तब न तो भारतीय जनता पार्टी थी और न ही चुनाव का कोई नामो निशान था। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के प्रचार अभियान में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जोर शोर से जुटी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के बाड़मेर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री मोदी शाम में दौसा में रोड शो का नेतृत्व करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा सरकार ने अब तक राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति सहित अन्य सभी वादे पूरे किए हैं। श्री शाह ने मुरादाबाद में भाजपा प्रत्याशी सर्वेश सिंह और संभल से पार्टी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आईएनडीआई गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए आज कोयम्बतूर का दौरा कर रहे हैं। उनके साथ द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के नेता एमके स्टालिन भी मंच साझा करेंगे। तमिलनाडु में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच रहा है। प्रचार के लिए अब केवल कुछ ही दिन शेष हैं। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कृष्णागिरी जिले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्ष में बुनियादी ढांचा सुविधाएं, आवास, पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति, व्यवसायगत सुविधाएं और छोटे व्यापारियों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराई है। उन्होंने डीएमके के सरकार पर जनहित पर ध्यान देने के बदले वंशवादी शासन को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और डीएमके नेता एमके स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय जनता पार्टी पर बेरोजगारी, विभाजनकारी राजनीति, भ्रष्टाचार के नए तरीके अपनाने और युवाओं को उज्ज्वल भविष्य से वंचित करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज मदुरई पहुंचेंगे। वे राज्य के विभिन्न स्थानों पर पार्टी और गठबंधन उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी आज तिरुनेलवेल्ली और कोयम्बतूर में चुनाव प्रचार करेंगे। असम में विभिन्न राजनीतिक दलों के मुख्य प्रचारक रैलियां कर मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा धेमाजी और चबुआ में विजय संकल्प रैली में हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता भगवंत मान भी आज दोपहर डिब्रूगढ़ लोकसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे। राज्य कांग्रेस अध्यक्ष भूपेन बोरा भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए रैलियां कर रहे हैं। वहीं सिक्किम में लोकसभा की एकमात्र और विधानसभा की 32 सीटों के लिए प्रचार तेज हो गया है। सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा, विपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट, भाजपा, कांग्रेस और नवगठित सिटीजन एक्शन पार्टी प्रचार में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्ष के शासनकाल में भ्रष्टाचार समाप्त करना उनकी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है। एक हिंदी दैनिक के लिए साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार चाहे किसी भी स्तर पर हो, देश के लोगों पर इसका असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि जनकल्याण के पैसे चुराने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। देश के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की श्रृंखला में आज हम मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ संसदीय सीट के बारे में जानकारी देंगे। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
बुंदेलखंड की अयोध्या कही जाने वाली ओरछा के लिए देशभर में लोकप्रिय टीकमगढ़ सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है। 2009 से यहां भाजपा का कब्जा है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए द्वितीय चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र में 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। टीकमगढ़ सीट से इस बार कुल 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री और मौजूदा सांसद डॉ वीरेंद्र कुमार को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे पंकज अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है। इस चुनाव में 18 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। इसके लिए पूरे लोकसभा क्षेत्र में 2077 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 2019 के चुनाव में डॉ वीरेंद्र कुमार ने कांग्रेस की किरण सिंह अहिरवार को करीब 3.5 लाख वोटों से हराया था। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
निर्वाचन आयोग ने गृह मंत्रालय के साथ अरुणाचल प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया के सभी पक्षों का आकलन किया है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि स्थिति की समीक्षा के बाद निर्वाचन आयोग ने राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष बलों की अतिरिक्त 10 कंपनियां भेजी हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsoneir.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsoneir पर भी उपलब्ध हैं।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोट मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब्दुल मतीन ताहा और मुसाविर हुसैन शाजिब को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने कहा है कि अब्दुल मतीन ताहा इस धमाके का मुख्य षड्यंत्रकारी है और मुसाविर हुसैन शाजिब ने विस्फोटक को कैफे में रखा था। आम आदमी पार्टी ने आज आरोप लगाया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश की जा रही है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में पार्टी की वरिष्ठ नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा कि अधिकारियों ने दिल्ली सरकार की बैठकों में भाग लेना बंद कर दिया है।
बहुत बड़ी साजिश हो रही है, दिल्ली की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है, अरविंद केजरीवाल की सरकार को गिराने की साजिश हो रही है और दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश हो रही है।
भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई के प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उसके नेता काल्पनिक कहानियां गढ़ने में माहिर हैं।
ये सब लोग भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए लोग हैं। झूठ बोलना, मनगढ़ंत कहानियां रचना, ये आतिशी मार लेना की खासियत है। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिसके 60 से ज्यादा विधायक हैं, मैं पूछना चाहता हूं इनसे, क्या आपको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्या आपका अपने विधायकों से संपर्क खत्म हो गया है? क्या आपके विधायक आपके भ्रष्टाचार से तंग आ चुके हैं? क्या कारण है?
श्री सचदेवा ने यह भी कहा कि यह आरोप कथित शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय की टिप्पणियों और भाजपा के खिलाफ आरोपों पर आतिशी को दिए गए मानहानि नोटिस के प्रभाव को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के नौशेरा प्रखंड में ग्राम रक्षा समिति के एक व्यक्ति ने बहादुरी और देशभक्ति की मिसाल पेश करते हुए सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम कर दी। ग्राम रक्षा समिति के सदस्य ने नियंत्रण रेखा पर चार व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधि देखने के बाद अन्य लोगों को सतर्क कर दिया। गांव वालों ने वहां पहुंचकर लगभग 8.5 किलोग्राम हेरोइन जैसे मादक पदार्थ से भरा एक बैग बरामद किया। संदिग्ध लोग मकरी गांव के निवासी थे। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। इस सिलसिले में मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मी के मौसम से निपटने की तैयारियों की समीक्षा के लिए कल एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उन्हें इस वर्ष अप्रैल से जून की अवधि के लिए तापमान के अनुमान के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें आगामी मौसम के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों, विशेष रूप से मध्य भारत और पश्चिमी प्रायद्वीपीय भारत में सामान्य से अधिक अधिकतम तापमान रह सकता है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में दवाएं, इंट्रावीनस तरल पदार्थ, आइस पैक, ओआरएस और पीने का पानी की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मध्य भारत में आज हल्की से सामान्य वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ वर्षा और आंधी चल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद में 13 और 14 अप्रैल को कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश में 14 अप्रैल को बारिश हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 7 से हरा दिया। खेलों में किर्गिस्तान के बिश्केक में कल एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने 3 पदक जीते। 19 वर्षीय उदित ने 57 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक, अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में रजत और विकी ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार जोरों पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ ही जम्मू कश्मीर में जल्द ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन कोयम्बतूर में INDI गठबंधन की रैली का नेतृत्व करेंगे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। और लखनऊ में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।